ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए, देश में बड़ी संख्या में हेपेटाइटिस के मामलों से निपटने के लिए बृहद कार्रवाई की आवश्यकता पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं एम्स में मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर पीयूष रंजन और कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं सुबोध मिश्र।
हेपेटाइटिस दुनिया के कई देशों के लोगों की सेहत के लिए एक बड़ा खतरा है। समय पर इलाज न हो तो ये जानलेवा बीमारी साबित हो सकती है। भारत में हेपेटाइटिस के मामलों की बढ़ती संख्या से निपटने के लिए बड़े पैमाने पर कदम उठाए जाने की जरूरत है। इसी विषय पर बातचीत के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं एम्स नई दिल्ली के डॉक्टर पीयूष रंजन। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। सबसे पहले इस बात पर रोशनी डालें कि हेपेटाइटिस क्या है, कैसी बीमारी है।
देखिए, हेपेटाइटिस को अगर हम लोग वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझें तो हेपेटाइटिस लीवर में सूजन का एक वैज्ञानिक नाम है। और जब कभी भी लीवर में सूजन हो सकता है तो यह कई कारणों से हो सकता है, जिसमें कि महत्वपूर्ण है वायरल हेपेटाइटिस, मेटाबॉलिक एसोसिएटेड फैटी लीवर डिजीज, नंबर तीन में आ जाता है शराब या दूसरी दवाइयों के खाने की वजह से अगर लीवर में जो सूजन हो जाती है, ये तीन महत्वपूर्ण कारण।
अगर हम बोले कि संक्रामक कौन सी हैं, कैसे फैलती हैं और क्या असर होता है शरीर पर, इस पर कुछ बताना
जी
चाहिए।
जैसा मैंने बताया कि हेपेटाइटिस मूल तौर पर तीन कारणों से होता है। वायरल हेपेटाइटिस, जो कि वायरस के इन्फेक्शन की वजह से होता है, यह संक्रामक होता है। आम बोलचाल की भाषा में भी हम लोग कहते हैं हेपेटाइटिस ए बी सी डी ई, ये पांच तरह का होता है। ये वो टाइप का हेपेटाइटिस है जिसमें कि इन्फेक्शन के द्वारा वो फैलता है। दूसरा हो गया मेटाबॉलिक एसोसिएटेड फैटी लीवर डिजीज, जो कि मोटापे की वजह से फैटी लीवर डिजीज होता है, जिसके कारण लीवर में एक प्रोपोर्शन ऑफ जो पेशेंट जो होते हैं जिसमें लीवर में सूजन आ जाती है। इस कारण से जो हेपेटाइटिस होता है वो सूजन नहीं होता, सूजन होने के साथ साथ उसमें इन्फेक्शन की वजह से नहीं होता है। तीसरा जो ड्रग्स एंड टॉक्सिन की वजह से होता है, यह भी इन्फेक्टिव नहीं होता है। इन्फेक्शन का मतलब होता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने की प्रवृत्ति।
अगर देखा जाए तो आपने बताया कि ये अलग अलग किस्में हैं इसमें, और हो सकता है सबके सिम्टम्स भी कुछ अलग होंगे, तो कैसे इंसान शुरुआती चरण में कैसे समझ सकता है कि वो इस बीमारी की चपेट में आ रहा है।
देखिए, लीवर जो है हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है, जो कि मूल तौर पर टॉक्सिन्स जो होते हैं उसको खत्म करता है, उसको शरीर से निकालता है, और इसके साथ साथ यह जो बिलीरुबिन से संबंधित जो मेटाबॉलिज्म है उसको भी नियंत्रित करता है। इसके साथ साथ इसके कई सिंथेटिक पार्ट होते हैं, जैसे कि वो प्रोटीन को बनाता है। तो इन सभी के फंक्शन में जब कभी भी कमी हो जाती है तब शरीर में कई तरह के सिम्टम्स और साइन आने लग जाते हैं, जिसमें महत्वपूर्ण है मरीज को अत्यधिक थकान होना, कमजोरी महसूस होना, उल्टियां आना, आंखें और चेहरे की जो त्वचा है उसमें पीलापन का समावेश हो जाना, और जो एडवांस स्टेज ऑफ लीवर डिजीज होता है उसमें जो है वो, क्योंकि प्रोटीन का सिंथेसिस जो है वो कम हो जाता है, तो इसकी वजह से पेट में पानी का भर जाना, पैरों में जो है वो अत्यधिक सूजन आ जाना, जिसको कि हम लोग पेरिफेरल एडिमा कहते हैं, ये सारे इसके एडवांस स्टेज के मैनिफेस्टेशन है। इसके साथ साथ जो लीवर डिजीज के, जो क्रॉनिक लीवर डिजीज के पेशेंट होते हैं, उसमें जो है वो शौच के रास्ते से या मुंह के रास्ते से जो है ये उल्टी में या शौच में जो है खून का आना भी एक सिम्टम है।
अगर हम देश में अभी अगर देखें तो जैसे इसकी स्क्रीनिंग और वैक्सीनेशन, लेकिन इस पर चर्चा से पहले ये बताना उचित होगा कि कौन सी किस्म है इस बीमारी की जो वैक्सीन से जिनकी रोकथाम की जा सकती है।
जैसा मैंने बताया कि तीन प्रमुख तरह के हेपेटाइटिस, इटियोलॉजिकली अगर हम कहें, कारण के स्पष्ट के अनुसार कहें, तो जो वायरल हेपेटाइटिस के जो वैक्सीन होते हैं, जो कि इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस जिसे कहते हैं, उसके पांच मुख्य प्रकार होते हैं, हेपेटाइटिस ए बी सी डी और ई। इसमें जो वैक्सीन जो है वो सबसे कारगर जो है हेपेटाइटिस बी का होता है। इसमें हाल के समय में लगभग एक दशक से जो है वो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तहत, जैसे बच्चों को जन्म के बाद ही जो हेपेटाइटिस का वैक्सीन दिया जाता है, उसी में हेपेटाइटिस बी के वैक्सीन को समावेशित कर लिया गया है। इसके अलावे भी इस वैक्सीन को, जो कि जिन लोगों को बचपन में नहीं यह वैक्सीन दी गई है, तो ऐसे हेल्थ केयर वर्कर भी जो है वो वैक्सीन को ले सकते हैं और उसके द्वारा अपने आप को हेपेटाइटिस बी से बचा सकते हैं।
ये तो हुई वैक्सीन की बात, और ये वैक्सीन पूरी तरह से कारगर है
जी। इसकी प्रोटेक्टिव एफिकेसी बहुत ज्यादा है, 90% से ज्यादा यह बचाव करने में सक्षम है।
जी, और जैसा आपने बताया कि शुरुआती लक्षण है, और अगर और वैसे अगर हम देखें आम जनता के बीच या जो स्वास्थ्यकर्मी हैं, तो इस बीमारी के स्क्रीनिंग के लिए क्या कुछ किया जा रहा है?
देखिए, स्क्रीनिंग अगर हम लोग सोचे तो जैसा मैंने बताया कि जो रिस्क फैक्टर्स है, जो इटियोलॉजी, जो इसके कारण है, उसे समझना जरूरी है। तो जिसमें एक प्रमुख कारण है ड्रग्स एंड टॉक्सिन। तो हम लोग जन जागरण के माध्यम से, जैसे कि अभी रेडियो पे हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, लोगों के मन में पब्लिक अवेयरनेस ये इस बात को फैलाएं, शराब के अत्यधिक सेवन से या कुछ दवाइयां होती हैं जिसमें कि हर्बल एंड डायटरी सप्लीमेंट्स होते हैं, जैसे कुछ कॉमनली यूज दवाइयां भी जो होती हैं, जैसे कि पैरासीटामोल की दवाइयां अगर अनियंत्रित वे में लिया जाए, तो कुछ एंटीबायोटिक भी होता है, तो उसकी वजह से जो है वो लीवर में सूजन या हेपेटाइटिस हो सकता है। इसके साथ साथ जो आज के समय में जो एक जंगल की आग की तरह, एक एपिडेमिक की तरह जो फैल रहा है, वो मोटापे के कारण जो हेपेटाइटिस होता है, जिसको कि हम लोग मेटाबॉलिक एसोसिएटेड फैटी लीवर डिजीज मैफेल्ड कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जब अत्यधिक चर्बी आपके लीवर में जमा हो जाता है, और जब ये एक स्तर से ज्यादा जमा हो जाता है, तो इसकी वजह से लीवर में सूजन आने लग जाता है, और ये सूजन जो है दसियों साल के बाद जो है ये लीवर में सिरोसिस, जिसको कि हम लोग क्रॉनिक लीवर डिजीज और लीवर में परमानेंट डैमेज कहते हैं, या फिर कई केसेस में लीवर में कैंसर का कारण बन सकता है। तो दो बचाव के लिए और रोकथाम का सबसे ये तरीका हुआ, अगर हम लोग जन जागरण जागृति करें, स्क्रीनिंग में अगर अपने वजन को हम लोग समय समय नापते रहें, और ये देखें कि अगर बीएमआई 23 या 25 से ज्यादा नहीं हो रहा है, तो हम लोग अपने आप को जो मेटाबॉलिक एसोसिएटेड फैटी लीवर डिजीज जो है उससे बचा सकते हैं। इसके अलावे जो वायरल हेपेटाइटिस से संबंधित जो हो गया, तो वायरल हेपेटाइटिस में जो हेपेटाइटिस बी, सी और ई जो है, जैसे हेपेटाइटिस सी जो है वो संक्रमित रक्त के चढ़ाने से होता है, जैसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन के समय में, तो कोई भी अच्छे ब्लड बैंक जो गवर्नमेंट नोटिफाइड ब्लड बैंक होता है, तो वो हमेशा इसकी स्क्रीनिंग करता है। और हेपेटाइटिस बी का भी जो है वो वैक्सीनेशन प्रिवेंटेबल है, वो हमने बताए। हेपेटाइटिस ई की जांच गर्भावस्था के दौरान जो है एंटीनेटल चेकअप के दौरान में हर महिला का किया जाता है।
आपने अभी जैसे फैटी लीवर की बात की, और कि सबको ध्यान देना चाहिए कि बीएमआई आपका 23 पर हो, तो इसके साथ हमेशा ये जुड़ा होता है, डॉक्टर भी हमेशा ये सलाह देते हैं कि आप वजन कम करें। आप संक्षेप में बताना चाहेंगे कि इंसान वजन कम कैसे करे ताकि उसकी लीवर की सेहत ठीक रहे?
देखिए, ये तो बहुत गंभीर और बहुत बड़ा सवाल है कि वजन कैसे कम किया जाए। मेरा ख्याल है हर किसी का जरूर एक न एक बार ये सामना जरूर हुआ होगा कि वजन कम करने की कोशिश की होगी, और आंकड़े ये बताते हैं कि जो लोग वजन कम करने की कोशिश या शुरुआत करते हैं, उसमें 80% लोग जो है वो इसे प्राप्त करने में असफल रह जाते हैं। लेकिन मैं दो मूल बातें कहूंगा। सबसे पहले, खाने में घी, तेल, मीठा मसाला, इसका सेवन बंद कर दें। घी बंद करने का मतलब क्या हुआ? दाल में घी या छनुआ पूरी, जिसे हम लोग कहते हैं पराठे हुए, इन सबों के बदले जो है आप सादी रोटी वो खाएं। अत्यधिक तेल का मतलब क्या हुआ कि जो सब्जी आपकी बनती है उसमें कम से कम तेल का प्रयोग हुआ हो, और कभी भी तेल जो है आपकी आंख में नजर न आए और थाली में कभी भी न लगे, ऐसा कोशिश करें। मीठा मतलब खाने के पहले, खाने के बाद, खाने के दौरान, कभी से मिलते समय जो हम लोग जो मीठा ये खाने का जो एक आदत होती है, एक परंपरा होती है, उसे अपने आप को बचा करके रखें, क्योंकि मीठा जो है वो बड़ा कैलोरी डेंस होता है, जिसमें बहुत कम खाने के बाद भी जो है वो बहुत ज्यादा एनर्जी जो है वो जनरेट करता है। मसाला मतलब अगर आप मांस मछली के भी शौकीन हैं, अगर आप चिकन भी खाते हैं या फिर वो पनीर भी ये खाते हैं, तो नॉर्मल रोस्टेड वाली जो पनीर या फिर वो चिकन खाएं, उसके जो पनीर बटर मसाला या चिकन बटर मसाला जो है उसे खाने से बचाएं। ये पहला सिद्धांत हो गया। दूसरा सिद्धांत हो गया नो फूड इन बिटवीन मील्स, यानी खाने के दौरान, खाने के बाद और खाने से पहले जब कभी भी मिलते हैं, तो हम लोग जो है वो जो कोई भी स्नैक्स हो गया, मंचिंग हैबिट जो हो गया, उन सभी चीजों से अगर अपने आप को बचा करके रखें, तो हम लोग अपने वजन को नियंत्रित या वजन को कम करने में यह कारगर हो सकता है।
वजन कम करने के लिए आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। इसके अलावा अगर हम देखें तो भारत में आम जनता के बीच सबसे ज्यादा मामले किस तरह के हेपेटाइटिस के आते हैं?
देखिए, सबसे ज्यादा मामला तो आज के समय में जो है मेटाबॉलिक एसोसिएटेड फैटी लीवर डिजीज, यानी वजन के ज्यादा बढ़ने, जिसको कि हम लोग मेटाबॉलिक सिंड्रोम का एक प्रकार कहते हैं, उसके कारण जो लीवर में चर्बी के जमा हो जाने और उसकी वजह से जो सूजन होता है, ये दूसरे इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस के कारण जो है, जो लीवर में जो हेपेटाइटिस होता है उसको भी ये सरपास कर गया है। तो आज की डेट में सबसे ज्यादा कारण, ये इम्पोर्टेंट कारण जो लीवर डिजीज या हेपेटाइटिस का जो है, वो मेटाबॉलिक एसोसिएटेड फैटी लीवर डिजीज है।
जी, जो आपने दो किस्में बताई जो ओरोफिकल रूट से
जी
है, उनके रोकथाम या उनसे बचाव के लिए क्या कदम उठा सकते हैं, जैसे पानी के स्रोत पर ध्यान दें या
जी, जी,
सफाई बरतें?
जी, जैसे हमने इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस में कहा कि हेपेटाइटिस ए बी सी डी ई होता है, उसमें हेपेटाइटिस ए और ई जो है वो ओरोफिकल रूट यानी कि खान पान के संबंध में अगर हम लोग सावधानी और साफ सफाई के ध्यान को रखने में गड़बड़ी अगर करें तो इसकी वजह से यह बीमारी हो सकती है। इसके रोकथाम के लिए आवश्यक है कि हमेशा हाथ धो करके भोजन करें, जहां तक संभव हो घर का पका हुआ भोजन करें, और जो बाहर से जो सब्जी या फल वगैरह लाएं उसको खूब अच्छे से धो करके तब उसे खाएं। तो इन सभी कारण से जो है हम लोग जो है हेपेटाइटिस ए और ई से अपने आप को बचा सकते हैं।
इसके अलावा जैसे जो बाकी है आपने बताया कि वो खून चढ़ाने से या गलत नीडल
के प्रयोग से, जो स्पेशली हेपेटाइटिस बी और सी में जो है जो एचआईवी एड्स से फैलता है, जो सभी कारणों की वजह से जिसमें कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन इम्पोर्टेंट है, इन्फेक्टेड नीडल जो होता है, सुइयां जो होती हैं उसकी वजह से हो सकता है, असुरक्षित यौन संबंधों की वजह से हो सकता है, तो इन सभी कारणों से जो है हेपेटाइटिस सी जो है एक कॉमनली फैल सकता है। तो जब कभी भी आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराएं तो जरूर जो है वो गवर्नमेंट अप्रूव्ड या जो एनएबीएल जो एक्रेडिट जो लैब है, जो ब्लड बैंक है, उसी से आप ये ब्लड का ये ले, और ब्लड ट्रांसफ्यूजन के पहले प्रॉपर क्रॉस मैचिंग के साथ साथ जो है इन सभी इन्फेक्शन का भी प्रॉपर स्क्रीनिंग हो चुका हो, इस बात का ध्यान रखें।
इसके अलावा अगर हम देखें तो हेपेटाइटिस से बचाव के लिए आपने जो इतने सारे कदम बताए हैं, लेकिन जो अलग अलग किस्में हैं इनमें से अगर किसी को ये बीमारी हो ही जाती है
जी,
तो इनमें से किनका इलाज संभव है और किनका नहीं है?
देखिए, शुरुआती समय में अगर देखा जाए सारे तरह के हेपेटाइटिस, चाहे वो इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस हो, इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस में जो हेपेटाइटिस ए और ई ये सेल्फ लिमिटेड होते हैं, यानी कि ये एक से लेकर छह महीने तक में ये खुद बखुद ठीक हो जाते हैं, और इसमें लगभग जो है वो 90-95% आदमी जो होता है वो ठीक हो जाता है। जो हेपेटाइटिस बी सी और डी वो अपनी क्रोनिसिटी के लिए जाना जाता है, मतलब एक बार होने पर क्रोनिक लीवर डिजीज जो है वो हो सकता है। हेपेटाइटिस सी का आज के समय में बहुत ही इफेक्टिव इलाज है और वो जड़ से ठीक हो जाने वाली जो है एक बीमारियों की श्रेणी में आ गया है। हेपेटाइटिस बी और डी का इन्फेक्शन एक साथ लगभग होता है और उसमें जब कभी भी होता है इसमें क्रोनिसिटी क्रोनिक लीवर डिजीज की संभावना होती है, लेकिन इसके लिए भी दवाइयां उपलब्ध हैं जिससे कि उसका इलाज हो सकता है। जो अन्य तरह की हेपेटाइटिस हो गए, मेटाबॉलिक एसोसिएटेड फैटी लीवर डिजीज, जैसे जो कि मैंने बताया कि यह मोटापा की वजह से मूल तौर पर होता है, तो एक बार में लोगों के हो जाए तो उसमें हम लोग कहते हैं 5-10% बॉडी वेट का लॉस, जिसको हम लोग क्लिनिकली सिग्निफिकेंट वेट लॉस कहते हैं, वो 10% वजन अगर कम हो जाए तो जो लीवर एंजाइम बढ़ा रहता है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ऐसी चीजें जो है इस अनुसार इसका इलाज हो सकता है। जो ड्रग्स एंड टॉक्सिन्स की वजह से जो होता है तो उसका एकमात्र और सबसे बेहतर उपाय यही है कि आप इन ड्रग्स एंड टॉक्सिन से जो है अपने आप को परहेज करें। सबसे महत्वपूर्ण इस बात को समझना है कि जो ड्रग एंड टॉक्सिन की वजह से जो लीवर डिजीज होता है, जिसको कि हम ड्रग इंड्यूस्ड लीवर इंजरी कहते हैं, उसका सबसे महत्वपूर्ण कारण जो डाइट्री सप्लीमेंट्स हम लोग कहते हैं, आजकल एक प्रवृत्ति बढ़ गई है कि लोग जो है नीम हकीन हर किसी से ये सलाह लेकर के जो है वो कोई प्रोटीन का पाउडर ले रहा है, कोई डायट्री सप्लीमेंट्स ले रहा है, कोई हर्बल सप्लीमेंट्स ले रहा है, और कई बार तो लोग आयुर्वेद के नाम पर जो है अप्रमाणिक दवाइयां खा लेते हैं। तो मेरा आपके माध्यम से तमाम सुनने वालों से यह आग्रह होगा कि जो कोई भी दवाई लें वो प्रमाणिक चिकित्सक या प्रमाणिक वैद्य के सलाह पर ही लें, ऐसे ही खुद से कोई दवाई को न लें, यह आपके लिए और आपके लीवर के स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह हो सकता है।
डॉक्टर पीयूष सुर्खियों में कार्यक्रम में आने और सार्थक चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
आपके माध्यम से तमाम सुनने वालों के साथ जुड़ने का मौका मिला, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
अभी आप सुन रहे थे देश में बड़ी संख्या में हेपेटाइटिस के मामलों से निपटने के लिए वृहद कार्रवाई की आवश्यकता पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे एम्स में मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर पीयूष रंजन। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे सुबोध मिश्र। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है AIR@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।